हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। योग कृषा के साथ आईसीयू के अंदर था, जबकि ध्रुव याशी को लेकर बाहर आया था। वो याशी का सबसे इंट्रोडक्शन करवा रहा था। याशी अर्जुन से मिली तो उसने अर्जुन को पहचान लिया था, क्योंकि थोड़े दिनों पहले जब योग याशी को श्रीलंका लेकर गया था, तब उसने वहां पर अर्जुन और कृषा की फोटो देखी थी। वो उनके रिश्ते के बारे में भी जानती थी। याशी ने जब उसे पहले से जानने की बात कही तो अर्जुन थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। उसकी यह एक्साइटमेंट थोड़ी देर के लिए ही थी। याशी ने बताया कि युग ने उसे यही कहा था कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। याशी की बात सुनते ही वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। इससे पहले कि अर्जुन गुस्से में फिर से युग को भला बुरा कहता, ध्रुव याशी का हाथ पकड़कर जल्दी से कहा, तुम्हें भूख लगी थी ना एंजल, चलो हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में चलते हैं, वहां तुम्हारे लायक कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ध्रुव याशी को ले जा रहा था तभी अर्जुन ने पीछे से कहा, वहां का खाना पेशेंट के हिसाब से बनता है, याशी वो नहीं खा पाएगी, मैं अपने साथ स्नैक्स रखता हूँ, रुको मैं ला देता हूँ। अर्जुन युग से गुस्सा था, ना कि याशी से, इसीलिए वो उसके लिए स्नैक्स लाने के लिए चला गया। वहीं उसके जाते ही ध्रुव ने राहत की सांस ली। वो नहीं चाहता था कि याशी के सामने वो लोग युग को भला बुरा सुनाए। सारा ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, ये युग भी ना, भगवान जाने क्या करता रहता है। इसे हमेशा से अर्जुन भैया से प्रॉब्लम थी, लेकिन बच्ची को ये कहने की क्या जरूरत थी कि अर्जुन भैया इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कृषा को पता चला तो उसे भी बुरा लगेगा। वैसे अर्जुन मामू का चेहरा देखने लायक था। अलीजा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा तो ध्रुव ने उसे शांत रहने का इशारा किया। वो भी अपनी मुस्कुराहट मुश्किल से काबू कर पा रहा था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे डियर चाचू ने अर्जुन के मरने की बात कही है तो क्या पता हमारे बारे में क्या कहा होगा, शब ने अलीजा के हंसने पर उसे डांटा। इस बीच अर्जुन वहां पर आ चुका था। ध्रुव ने अलीजा के साथ याशी को अर्जुन के केबिन में भेज दिया था। अलीजा फिजिकली काफी स्ट्रांग थी, वैसे तो वहां पर उनकी सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन अगर याशी पर कोई खतरा आ भी जाता तो अलीजा उससे अच्छे से निपट सकती थी। याशी के वहां से हटते ही ध्रुव ने सीरियस टोन में कहा, मैं आप लोगों से एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, एंजल नहीं जानती कि हमारी फैमिली एक माफिया फैमिली है। डैड ने उसके लिए एक परफेक्ट नॉर्मल लाइफ क्रिएट की है। उसके लिए डैड एक फेमस लॉयर है और मैं भी उन्हीं की तरह लॉ की स्टडी कर रहा हूँ। यही वजह थी कि उन्होंने किसी को एंजल के बारे में नहीं बताया और ना ही वो किसी को जानती है, तो प्लीज़ आप लोग उसके सामने ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे उसे थोड़ा भी डाउट हो। चलो तुम्हारे डैड को इस बात की तो फिक्र है कि वो मासूम सी जान उसकी इस खतरनाक सच्चाई से डर जाएगी, वरना तुम तो हमेशा से जानते थे कि तुम्हें बड़े होकर क्या करना है, अर्जुन ने सार्कास्टिकली कहा। वहीं अब शब्द और सारा इस बात को समझ रहे थे कि युग ने उनसे याशी के अस्तित्व के बारे में क्यों छुपाया था। वो बहस नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम पूरा ध्यान रखेंगे ताकि याशी को शक ना हो, शब्द ने ध्रुव के कंधे को सहलाकर कहा। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अंदर से योग आया। उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, क्रिश को होश आ गया है, उसके इनिशियल चेकअप करवाओ। अर्जुन ने तुरंत हामी भरी और डॉक्टर की टीम को बुला लिया था। योग अब बाहर आ गया था। वो सब काफी खुश थे कि कृषा को होश आ गया था। ध्रुव याशी को भी बाहर अपने पास में ले आया। वो युग का हाथ पकड़कर खड़ी थी। उसने युग से पूछा, जब मॉम ठीक हो जाएगी तब क्या आप उन पर गुस्सा करोगे डैड? याशी के सवाल पर सबका ध्यान युग की तरफ चला गया। वो भी जानना चाहते थे कि युग क्या जवाब देने वाला है, क्योंकि गलती तो कृषा ने की थी। वो उनका बिना बताए अकेले ही दक्ष से निपटने के लिए चली गई थी। युग ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में कहा, अभी हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसे रेस्ट की जरूरत है। हाँ, जब वो ठीक हो जाएगी तब उसे इस बात की डांट पड़ने वाली है कि उसने खुद का ध्यान नहीं रखा। युग जिस तरह प्यार और शांत लहजे से याशी को समझा रहा था, शब्दा सारा की निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। तुम्हें अपने भाई में कुछ ज्यादा ही बदलाव नजर नहीं आ रहा? सारा शब्द से धीमी आवाज में पूछा। कृषा के आने के बाद भी युग में काफी चेंज आए थे, लेकिन याशी ने तो उसे पूरी तरह बदल दिया है। मुझे खुशी होती कि अगर वो शुरू से एक ऐसा अच्छा इंसान बनकर रहता। बाकी वो अपनी बेटी के लिए इतने एफर्ट्स कर रहा है, ये देखकर अच्छा लग रहा है, शब्द ने जवाब दिया। शब्द और सारा की हमेशा से यही कोशिश रहती थी कि युग माफिया की दुनिया को अपनाने के बजाय नॉर्मल दुनिया में रहे, एक अच्छा इंसान बनकर, लेकिन युग ने उनकी कभी नहीं सुनी। युग जानता था कि अगर उसे सिंघानिया फैमिली से बदला लेना है या छाया के कातिलों तक पहुंचना है तो उसे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, और ये एक माफिया किंग बनने के बाद ही पॉसिबल था। कृषा के होश में आने के बाद शब ने कॉल करके घर पर भी बता दी थी। हरलीन और अलीशा कृषा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर आए, उन्होंने युग को याशी के साथ देखा तो एक पल के लिए वो भी ठिठक गए थे। इससे पहले बाकी लोगों की तरह उन्हें कन्फ्यूजन होती, शब ने उनकी तरफ बढ़ते हुए याशी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, बुआ इससे मिलिए, ये आपके डियर युग की बेटी याशी है। इसकी उम्र देखकर तो आपको लग रहा होगा कि ये 6 या 7 साल पहले इस दुनिया में आई होगी। हाँ, अब तक हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया, इसका जवाब आपका लाडला ही दे सकता है। याशी फिजिकली थोड़ी वीक थी, इस वजह से वो अपनी उम्र से कम लगती थी। शब्द के कहते ही युग ने उसे तुरंत टोकते हुए कहा, 8 साल 2 महीने, इतने वक्त पहले याशी इस दुनिया में आई थी। बहुत क्यूट है, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, हरलीन ने मुस्कुराकर कहा और याशी के फोरहेड पर किस किया। इनका सही है, बुआ हमेशा युग की साइड लेती हैं, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, इन्होंने एक बार भी नहीं डांटा उसे, शब्द बोला। हाँ तो तुम क्या चाहते हो मैं बिना गलती के डांट सुनूं, युग ने शब्द को घूरते हुए कहा। इस वक्त तक कृषा के जरूरी चेकअप हो चुके थे और अब वो पूरी तरह खतरे से बाहर थी, बस उसे आराम की जरूरत थी। हालांकि याशी के बारे में उन सबको पता चल चुका था, फिर भी युग ने याशी को अभी भी मलिक के पास ही भेजा था। वो उसकी सिक्योरिटी को लेकर किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता था। हॉस्पिटल में युग, ध्रुव के अलावा शब्द और सारा भी मौजूद थे। वो सभी एक एक बार करके कृषा के पास गए थे, लेकिन हाँ, वो अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आई थी। एनेस्थीसिया का असर उसके ऊपर अभी भी था। जब कृषा की तरफ से उसकी स्टेबल होने की न्यूज मिली, उसके बाद ही ध्रुव ने अपना मोबाइल चेक किया। उसके पास वीर के काफी सारे कॉल्स आए हुए थे। ध्रुव तुरंत दूसरी तरफ गया और उसने वीर को कॉल किया। सामने से वीर बोला, तारा को होश आ गया है ध्रुव, अब तुम देख लो तुम्हें कैसे डील करनी है। हाँ, यहाँ कृष भी ठीक है, उसे बांध दो, मैं अभी आ रहा हूँ, ध्रुव ने सर्द आवाज में कहा और वहां से जाने के लिए निकल गया। युग ने उसे जाते हुए देखा था, लेकिन फिर भी उसने उसे कुछ नहीं पूछा। ध्रुव इस वक्त गाड़ी में था और काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था, उसे कुछ भी करके जल्द से जल्द तारा के पास पहुंचना था।
मैंने पहली बार किसी बाहर वाले पर यकीन किया था, तुम अच्छे से जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे नशे में एक्सेप्ट भी किया था, उसके बावजूद तुमने मुझे धोखा दिया। हर बार मैंने यही कहा था कि मुझे धोखा मत देना तारा अग्निहोत्री, वरना अच्छा नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है उसकी जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। ध्रुव जल्द ही युग के विला में पहुंच चुका था और उसके पैर इस वक्त सीधे टॉर्चर एरिया की तरफ पड़ रहे थे। तारा को वहां 2 पिलर्स के बीच में बांधा हुआ था। कल जब तारा ने कृषा को शूट किया था, उसके बाद ध्रुव ने अपने गुस्से में उसके सिर को 2 से 3 बार दीवार से भिड़ाया था। तारा के सिर से खून निकल रहा था और वो काफी वीक भी महसूस कर रही थी, उसे दर्द हो रहा था। इतनी देर में उसे एक बार भी खाना या पानी तक नहीं दिया गया था। तारा बेसुध सी हालत में बंधी हुई खड़ी थी, उसे प्यास लगी थी और वो बेहद धीमी आवाज में पानी मांग रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके मुंह को उठाकर जोर से दबाया है। तारा ने आंखें खोली तो सामने ध्रुव खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें बेइंतहा सर्द थीं। मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, आई स्वेयर मैं वो नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि कृष। तारा अपनी सफाई दे रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, ध्रुव ने उसके गाल पर कसकर थप्पड़ लगाया। तुम उन्हें कृष कहने का हक हो चुकी हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से पिछले 22 घंटे में हमारे ऊपर क्या बीती है, उन्हें कुछ हो जाता तो, ध्रुव गुस्से में चिल्लाया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई और तुम मुझे सजा भी दे सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती ध्रुव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तारा ने सुबकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ध्रुव जोर से हंसा। तारा को पहली बार ध्रुव से डर लग रहा था, वो पीछे हटना चाहती थी लेकिन उसे बांधा गया था। अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करती हो, अपनी असली पहचान बताओ तारा अग्निहोत्री, मैंने पहले कहा नहीं लेकिन क्या रिश्ता है तुम्हारा कबीर अग्निहोत्री से, जो तुम्हारा सरनेम सेम है और उसने तुम्हारे भाई बहनों को किडनैप कर रखा था, ध्रुव बोला। अचानक उसके दिमाग में कुछ स्ट्राइक हुआ और उसने कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो वो तुम्हारी रियल भाई बहन नहीं थे और तुम शुरू से मुझे धोखा दे रही थी, शायद इसी दिन के लिए तुम्हें मेरे करीब भेजा गया होगा कि पहले मेरे करीब आओ फिर मेरा दिल तोड़ने के लिए मेरी मॉम को नुकसान पहुंचाओ। मुबारक हो तारा अग्निहोत्री, तुम अपने मकसद में कामयाब हुई लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। तुम क्या करने का सोच रहे हो ध्रुव, तारा ने कांपती आवाज में पूछा। उसे ध्रुव की आंखों में वही सनक दिखाई दे रही थी जो किसी को मारने से पहले होती थी। अचानक ध्रुव ने रिवॉल्वर निकाली और उसमें गोलियां भरने लगा था। तो तुम्हें मेरी क्रिश को शूट करने का शौक चढ़ा है? चलो आज मैं भी अपना शौक पूरा कर लेता हूँ, पर मरने से पहले मेरे सवालों के जवाब दे देना। अगर बीच में एक सेकंड के लिए भी रुकी तो बिना सोचे समझे गोली मार दूंगा, ध्रुव ने सख्त आवाज में कहा। वो सरासर पागलपन पर उतर आया था। तारा उसे रोकना चाहती थी, पर ध्रुव तो सुनने के लिए तैयार तक नहीं था। उसने गन का सेफ्टी लॉक हटाया और अपना हाथ ट्रिगर पर रख लिया था। पहला सवाल, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? ध्रुव बोला। तारा अग्निहोत्री ही है, तुम जाकर चेक कर सकते हो, तारा ने जल्दी से जवाब दिया। उसे सच में ध्रुव से डर लग रहा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। वो डर से सिसक रही थी। वो तो तुम्हारे डेथ सर्टिफिकेट पर आ ही जाएगा, तब कन्फर्म कर लूंगा। दूसरा सवाल, दक्ष मल्होत्रा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है जो तुम आधी रात को उसके साथ वहां पर मौजूद थी और उसकी वजह से तुमने मेरी क्रिश को शूट किया? ध्रुव ने अपना अगला सवाल पूछा। वो दक्ष से बहुत नफरत करता था, ऊपर से तारा का उसका साथ देना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। इतनी बात तो ध्रुव को समझ में आ गई थी कि अगर तारा ने कृषा को शूट किया था तो उसके पीछे की वजह दक्ष रही होगी। फिलहाल उसके दिमाग में यही चल रहा था कि शायद दक्ष और तारा रिलेशनशिप में थे और ध्रुव से बदला लेने के लिए दक्ष ने तारा को उसके पास भेजा था। इस बार तारा ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। ध्रुव ने उसे थोड़ी देर पहले साफ कहा था कि उसके पास चुप रहने का ऑप्शन नहीं है। जैसे ही तारा की नज़रें झुकी और वो कोई भी जवाब नहीं दी तो ध्रुव ने गन को उसकी तरफ पॉइंट किया और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, गुड बाय तारा अग्निहोत्री। वहाँ गोली चलने और तारा के चिल्लाने की तेज़ आवाज़ आई।